पृष्ठ संख्या 87, अध्याय 4, दक्षिण के हिंदू सुधारक। 1. पिछले अध्याय में हिंदू धर्म का जो इतिहास बताया गया है वह प्राचीन काल से लेकर 8वीं सदी के प्रारंभ तक के विकास की निरंतरता को प्रकट करता है। यह विकास मुख्य रूप से उत्तर भारत में हुआ, जहां सभी महान आंदोलन उत्पन्न हुए और जहां से वे दक्षिण में फैले। इस सारी अवधि के दौरान उत्तर संस्कृति का अगुआ था, क्योंकि वही सभी ग्रंथों की रचना हुई और अधिकतर अपधर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दार्शनिक विचारधाराएं और पंथ विकसित हुए। किंतु 8वीं सदी के बाद एक बदलाव आया, उत्तर अपना नेतृत्व खो बैठा और अब दक्षिण ने पहल की। 8वीं सदी से 15वीं सदी तक दक्षिण धार्मिक सुधारों का गढ़ बन जाता है। यही वैष्णव और शैव संत भक्ति की धारा प्रवाहित करते हैं और शंकर, रामानुज, निम्बादित्य, बसावा, वल्लभाचार्य और माधव अपनी दार्शनिक प्रणाली का प्रतिपादन करते हैं। रामानुज के शिष्य रामानंद के माध्यम से यह चेतना दक्षिण से उत्तर की ओर गई। उत्तर से दक्षिण की ओर गतिविधियों के परिदृश्य का एकाएक स्थानांतरण उस समय भारत में हुए राजनीतिक और सामाजिक बदलाव का परिणाम था। उत्तर में हर्ष के साम्राज्य का विघटन हुआ, राजनीतिक एकता तिरोहित हो गई और ऐसे कई राज्य स्थापित हो गए जो कभी खत्म न होने वाले आपसी युद्धों में लगे रहे। बौद्ध धर्म पतनशील हो गया और वह क्रमशः शैव और शक्ति संप्रदायों में विलीन हो गया और उसका स्थान पौराणिक हिंदू धर्म ने ले लिया। राजपूत राज्यों की स्थापना ने पुरातन प्रणालियों में नए जीवन का संचार नहीं किया और जब उन राज्यों को मुस्लिम आक्रमणों ने उखाड़ फेंका तब हिंदू समाज अत्यंत कमजोर हो चुका था। दूसरी ओर दक्षिण में हिंदू धर्म एक विजेता धर्म था, उसने बौद्ध और जैन धर्म से संघर्ष किया था और इसमें वह विजयी हुआ था। इस विजय ने उसमें नई स्फूर्ति का संचार किया था। इसके अतिरिक्त दक्षिण के हिंदू राज्यों ने चोल और विजयनगर राजाओं के अंतर्गत समृद्धि और शक्ति का लंबे समय तक उपभोग किया था। इसके अतिरिक्त दक्षिण में ही इस्लाम हिंदू धर्म के संपर्क में आया, पृष्ठ संख्या 88, और उसने उभरते हिंदू चिंतन को उद्वेलित किया। प्राचीन काल से नदियों और पहाड़ों को भौगोलिक कठिनाइयों के बावजूद उत्तर के लोगों का संपर्क दक्षिण और सुदूर दक्षिण के निवासियों से था। संस्कृति की धाराएं निरंतर प्रवाहित हुई थी और उन्होंने उनकी आस्थाओं और प्रथाओं को प्रभावित किया था। तमिल प्रदेश के पर्वतों और वनों के देवता आर्य देवी देवताओं में समाहित हो गए थे। ब्राह्मण प्रवासियों की छोटी बस्तियां द्रविड़ राज्यों में स्थापित हो गई थी और उनके साथ वैदिक धर्म और संस्कृत विद्या का आगमन भी हुआ, जिससे दक्षिण के निवासियों के जीवन में बदलाव आया। उत्तर में बौद्ध और जैन धर्मों के प्रतिपादन के शीघ्र बाद बौद्ध और जैन धर्म प्रचारक दक्षिण आ गए थे और उन्होंने हजारों लोगों को अपने धर्म में दीक्षित कर लिया था। इस प्रकार ईसवी युग का प्रारंभिक सदियों में दक्षिण में कई धर्म उभर गए थे। आत्मवाद, शैतान की पूजा, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य पंथ अच्छे पड़ोसियों के रूप में साथ साथ अस्तित्व में थे। 5वीं सदी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना से सांस्कृतिक विजय की प्रक्रिया को बहुत बल मिला। नई स्फूर्ति वाले हिंदू धर्म के धर्म प्रचारकों की नई लहरें सारे देश में व्याप्त हो गईं। ब्राह्मण अप्रवासी केरल प्रदेश में बस गए। आस्थाओं में उन्होंने नए जीवन का संचार किया और अपधर्मी प्रणालियों से घातक संघर्ष करने के लिए उन्हें तैयार किया। 7वीं सदी में वेन सांग ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मजबूती से स्थापित पाया था, किंतु शैव संप्रदाय उनके शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के रूप में तेजी से उभर रहा था। पल्लव शासक शैव संप्रदाय के उत्थान के महान समर्थक थे, जबकि उत्तर में हर्ष सहिष्णुता पूर्वक हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को समान रूप से प्रोत्साहित कर रहा था। पुलकेशियन द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ किया। जिसका तात्पर्य था ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान। उधर दक्षिण में स्थित उसका समकालीन पल्लव शासक नरसिंह वर्मा महामल्लपुरम के महान मंदिर का निर्माण करके पौराणिक हिंदू धर्म के हितों को दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ा रहा था। सातवीं और आठवीं सदियों में नर्मदा नदी के दक्षिण की ओर दक्षिण की दो प्रमुख शक्तियां चालुक्य और पल्लव दो एक जैसे उद्देश्यों में व्यस्त थीं। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करना और एक दूसरे को नष्ट करना, आठवीं सदी होने के पहले वे अपने दोनों उद्देश्यों में सफल हो गई थीं। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभुत्व पर घातक रूप से आघात किया और हिंदू धर्म को विजयी बनाया था। उसके अतिरिक्त उन्होंने स्वयं को इतना थका डाला था कि उसके फलस्वरूप दक्षिण से चोलों ने और उत्तर से राष्ट्रकूटों ने उनके प्रदेशों को हड़प लिया। इस प्रकार आठवीं सदी में धर्म और राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, विचारों और लोगों में अनवरत संघर्ष हुआ, राजवंशों का नाटकीय उत्थान और पतन हुआ, विभिन्न विचारधाराओं में दार्शनिक शास्त्रार्थ हुआ और मंदिरों में सांप्रदायिक विवाद हुए। पृष्ठ संख्या 89। ऐसे वातावरण में चिंतन और अनुभव को बहुत प्रोत्साहन मिला। कुछ समय के लिए लोगों के मस्तिष्क पुरानी पारंपरिक प्रथाओं के अत्याचारों से मुक्त हो गए और अपरिचित क्षेत्रों से आने वाले विचारों के लिए उनके द्वार खुल गए। सघन गतिविधियों के इस काल के दौरान दक्षिण में होने वाले परवर्ती धार्मिक विकास की बुनियाद रखी गई। शैव और वैष्णव संत मिलकर लोगों को बौद्ध और जैन धर्म से हटाकर शिव और विष्णु की पूजा के लिए उन्मुख करने लगे। अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए उन्होंने हृदय को प्रभावित किया और उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति में रहने और उसकी कृपा प्राप्त करने के भक्ति और आनंद से संबंधित प्रभावशाली गीत गाए। उनकी कविताएं आम लोगों की ही भाषा में थी और उसमें और अन्य बातों में वे उन धर्मों के प्रति बहुत ऋणी थे जिन्हें उन्होंने उखाड़ना चाहा था। उन्होंने बौद्ध धर्म से उसकी भक्ति, जगत की क्षण भंगुरता का विचार, मानवीय निरर्थकता की अवधारणाएं, कामनाओं का दमन और तपस्या तथा कर्म कांड, मूर्ति पूजा, स्तूप या लिंगम, मंदिर तीर्थ, उपवास, श्रमण संबंधी नियम और सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता का विचार लिया और जैन धर्म से उन्होंने उसका नैतिकतावादी स्वर तथा सभी प्राणियों के प्रति सम्मान की भावना ली। पौराणिक धार्मिकता में इन सभी विचारों का समन्वय, इन सबको मानवीय भावनाओं से आवित करना मिल प्रदेश के उन संत कवियों, प्रसिद्ध अडियारों और अलबारों की उपलब्धि थी जो सातवीं और बारहवीं सदी के बीच हुए। शिव और विष्णु के इन भक्तों ने भक्ति संप्रदाय को विकसित किया और उन दोनों संप्रदायों के अनुयायी उनकी कृतियों को सर्वोच्च प्रामाणिकता देते हैं। शैव साहित्य को राजराजा कुलशेखर चोल के समय तंजौर के नंबी ने तिरुमुराई का नाम देकर 11 समूहों में व्यवस्थित किया। इन 11 समूहों में से पहले 3 की रचना तिरुज्ञान संबंध मूर्ति स्वामी ने और अगले 3 की रचना तिरुनावकरसु ने की थी और सातवें की रचना सुंदरर ने की थी। इन सातों को मिलाकर देवारम बना। इनमें ईश्वर की प्रशंसा और प्रार्थना की कविताएं हैं और इनका उपयोग समारोहों और धार्मिक अवसरों पर वेदों के समान किया जाता है। आठवीं ग्रंथ जो उपनिषदों के समकक्ष है वह है माणिक वासहर कृत तिरुवाचकम। नौवीं है तिरु इस्सेप्पा जो गौड़ कवियों का संकलन है। दसवें में तिरुमुलर के गीत हैं और ग्यारहवें में नक्कीरर नंबी आंडार और दूसरों की रचनाएं हैं। ये 11 ग्रंथ पेरिया पुराण के साथ मिलकर शैवों की पवित्र गाथाओं का संकलन बनाते हैं। वैष्णवों का भी उनकी अपनी कविताओं का समानांतर संग्रह है। यह संग्रह 10वीं सदी में संभवतः नम्मा लवार के संपादन में नाथ मुनि द्वारा संकलित और पृष्ठ संख्या 90। व्यवस्थित किया गया था। इसे नालाया प्रबंधम के नाम से जाना जाता है और इसे वेदों के समान ही पवित्र माना जाता है। अलवारों की संख्या 12 मानी गई है। इनमें से 4 पोयगयार, पुरातार, पेयर, तिरुमलीसई पल्लव थे और अत्यंत प्राचीन थे। 3 चोल थे, तिरुप्पनर, टोंडाड, इप्पोडी और तिरुमनगई। 1 चेर था, कुलशेखर, और शेष 4 पांड्य प्रदेश के थे, पेरियार, आंडाल, नम्मलवार, मधुर कवि। इनका इतिहास हिंदू धर्म के विकास में महत्वपूर्ण है और उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण हैं उनके जीवन और उपलब्धियों का विवरण देना महत्वपूर्ण है। तिरुज्ञान संबंधर के माता पिता ब्राह्मण थे और उनका जन्म 7वीं सदी में तंजौर जिले के शियाली नामक स्थान में हुआ था। जनश्रुति के अनुसार वे 3 वर्ष की आयु में ही गीतों की रचना करने लगे थे। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने तीर्थयात्री रूप में शिव की प्रशंसा में गाते हुए दक्षिण भारत के सभी शैव तीर्थों की यात्रा की। एक संत के रूप में उनकी ख्याति मदुरा के शासक कुन पांडे के दरबार में पहुंची। राजा जैन धर्म का अनुयायी था किंतु रानी मंगैयर करसी और मुख्यमंत्री कलचरिचाय नयनार दोनों कट्टर शैव थे। किंतु रानी मंगैयर करसी और मुख्यमंत्री कलचरिराय नयनार दोनों कट्टर शैव थे और राजा का मस्तिष्क बदलने में अपने प्रभाव का उपयोग करने के लिए उन्होंने तिरुज्ञान को आमंत्रित किया। राजा की उपस्थिति में उन्होंने जैन आचार्यों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। राजा ने तो धर्म परिवर्तन कर लिया किंतु जैनियों ने अपना धर्म त्यागने से इनकार कर दिया और इसलिए उनमें से बहुतों को मौत के घाट उतार दिया गया, जैसा कि उनके हर गीत में अभिव्यक्त किए गए दुर्वचनों से प्रकट होता है। वह बौद्धों का घोर शत्रु था। ऐसा लगता है कि वैष्णव संत तिरुमंगई अलबार के साथ भी उनका विवाद हुआ। वे शैव संप्रदाय के ऐसे घोर समर्थक थे कि उन्हें शैव संप्रदाय के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है। शैव आचार्यों में उनका स्थान प्रमुख है और वस्तुतः उन्हें शिव का अवतार माना जाता है। नीचे लिखी कविता में बताया गया है कि ईश्वर के बारे में तथा ईश्वर से मनुष्य के संबंध के बारे में उनकी अवधारणा क्या थी। क्योंकि पिता आरूर है, उस पर प्रेम के पुष्प बरसाओ, तुम्हारे हृदय में प्रकाश का उदय होगा, प्रत्येक बंधन हट जाएगा। आरूर में जो पवित्र ईश्वर है उसकी प्रशंसा करना मत भूलो, जन्म के बंधन कट जाएंगे, सभी सांसारिक रीतियां पीछे छूट जाएंगी। हमारे प्रिय रत्न आरूर में सुनहरे फूल बरसाओ, तुम्हारा दुख तिरोहित हो जाएगा, तुम्हें अतुलनीय आनंद की प्राप्ति होगी। तिरुनावुक्कुरस तिरुज्ञान संबंधर के वरिष्ठ समकालीन थे। वे विल्लाल जाति के थे। कम उम्र में ही वे अनाथ हो गए थे और उनकी बहन ने शिव के उपासक के रूप में उनका पालन पोषण किया, किंतु उन्होंने अपना संप्रदाय त्याग दिया और जैन हो गए। बाद में वे फिर से शैव हो गए और उन्होंने उसके उत्थान को बहुत प्रभावित किया। उनकी कविताओं में भक्ति का गहन स्वर है, पाप के प्रति वे गहन रूप से संवेदनशील हैं और शिव की कृपा पर निर्भर हैं। उनका यह दृढ़ विश्वास है कि पाप के बंधन शिव की कृपा से ही टूटेंगे। ईश्वर के साथ मनुष्य का रिश्ता कितना निकट और आत्मीय है, यह नीचे लिखी कविता से प्रकट होता है। हे ईश्वर, तुम मेरे माता पिता हो, जिन संबंधियों की मुझे आवश्यकता है वे तुम हो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम सचमुच एक समृद्ध कोष हो, तुम ही परिवार, मित्र और घर हो। तुमसे मैं जीवन और आनंद प्राप्त करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं मायावी जगत की अच्छाइयाँ त्यागता हूँ। तुम ही मेरे लिए स्वर्ण मूर्ति और धन हो। अपने गहन ध्यान में वे ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहते हुए धर्म के सभी बाह्य रूपों से ऊपर उठ जाते हैं। तब उन्हें यह अनुभव हो जाता है कि कोई भी कर्मकांड उनकी सहायता नहीं करेगा, और गंगा स्नान, कन्याकुमारी की तीर्थयात्रा, वेदों का उच्चारण, शास्त्रों का अध्ययन, तपस्या, उपवास से कुछ उपलब्ध नहीं होगा। मुक्ति उन्हीं की और केवल उन्हीं की होगी जो हर स्थान पर परमेश्वर का स्मरण करते हैं। अपार के शिव शुष्क मानवीय अवधारणा नहीं है, बल्कि सर्वव्यापी है। उन्हें उसे पाना बहुत कठिन है, किंतु वह सद्विचार में विद्यमान है। वह धर्म ग्रंथों की आंतरिक गोपनीयता है जो परीक्षण और ज्ञान से परे है। वह मधु, दूध और उज्ज्वल प्रकाश है। वह देवों का राजा है, विष्णु, ब्रह्म, अग्नि और पवन में और प्रबल गर्जना वाले सागर और पर्वतों में निहित है। पृष्ठ संख्या 92। देवारम का तीसरे संयुक्त लेखक सुंदर मूर्ति ब्राह्मण था। उसका जन्म दक्षिण अकोट जिले में हुआ था। वह 8वीं या 9वीं सदी में हुआ। जाति के सिद्धांतों को वह कठोरता से नहीं मानता था, क्योंकि दो बार विवाह होने पर भी उसकी कोई भी पत्नी ब्राह्मण नहीं थी। वह संभवतः अंतिम अडियार था, क्योंकि उसने अपने पूर्ववर्ती 66 अडियारों की प्रशंसा में गीत गाए। उसकी कई कविताओं में मृत्यु के भय और मोक्ष में विश्वास का संकेत मिलता है। युवा संत द्वारा मृत्यु से बचाए जाने के निवेदन पर उसे बचाने के लिए आपने भयानक मृत्यु का संहार किया, ऐसे कृत्य सफलता पाते हैं, और मैं जिसने उन्हें देखा प्रार्थना करता हूँ, हे पिता, यदि भयानक यम मुझ पर दबाव डालता है उसे रोकिए, यह मेरा ताज है। आप अपने हरे पुनगूर में यह स्वीकारें, मैं आपके चरणों में आ गया हूँ और आप बच नहीं सकते। महानतम शैव संत माणिक्य वाचहर का जन्म मदुरा के पास वैगई नदी पर स्थित तिरुवतपुर ग्राम में हुआ था। उसके माता पिता ब्राह्मणों की अवित्तीय शाखा के थे। माणिक्य एक होनहार बालक था और 16 वर्ष की आयु में उसने संस्कृत का समग्र ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसकी प्रसिद्धि पांडे राजा के कानों तक पहुंची और उसने उसे दरबार में बुलाकर मुख्यमंत्री नियुक्त कर लिया। यद्यपि वह सुख और वैभव से घिरा रहता था, किंतु संसार के अनंत क्लेश से वह दुखी रहता था। उसके धर्म परिवर्तन की कहानी चमत्कारों से परिपूर्ण है। कहा जाता है कि राजा ने उसे अरब से आए घोड़े खरीदने के लिए भेजा। वह बड़े समारोह के साथ चला और उसका अभियान एक जुलूस जैसा था। मार्ग में उसे एक संत ब्राह्मण मिला, जिसके व्यक्तित्व से वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपना गुरु स्वीकार कर लिया। उसने राजा का कोष साधकों को भोजन कराने में खर्च कर दिया और सौंपे गए कार्य को पूरा किए बिना वह लौट आया। इससे राजा उस पर बहुत नाराज हुआ, किंतु अंत में वह अपने गुरु की कृपा से बच भागा, क्योंकि उसका गुरु स्वयं शिव था। इसके बाद गुरु ने उसे आदेश दिया कि वह तमिल प्रदेश को शिव के आराधक में परिवर्तित कर दे। एक घुमक्कड़ के रूप में शिव के गीत गाते हुए उसने पवित्र तीर्थों का भ्रमण किया और अंत में वह चिदंबरम आया और वहीं उसने विश्राम किया। उसने बौद्ध भ्रमणों के एक सम्मेलन में भाग लिया, जिसे सीलोन के राजा ने आमंत्रित किया था और जिसमें चेर राजा ने भी भाग लिया था। शास्त्रार्थ में बौद्ध पराजित हुए। और पृष्ठ संख्या 93। सीलोन का राजा शैव हो गया। माणिक्य के जीवन की यह अंतिम विजय थी और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी तिथियों को ठीक से तय करना कठिन है, किंतु संभवतः वह 9वीं सदी में हुआ था। उसकी कविताओं में उसके पूर्ववर्तियों से कहीं ज्यादा गहन आवेग और उत्तेजना है, और उसमें संदेह नहीं कि उसकी कविताओं ने उसके श्रोताओं के हृदयों को अत्यंत गहराई से प्रभावित प्रभावित किया होगा। डॉक्टर पोप का कथन है, जीवंत श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण इन गीतों का प्रभाव महान और त्वरित था। दक्षिण भारत को एक व्यक्तिगत ईश्वर की अमरता के आश्वासन की ओर की और प्रार्थना के आश्वासन की जरूरत थी। ये सब माणिक वासहर की रचनाओं में मिलते हैं। यहाँ उसके गीतों के कुछ नमूने दिए गए हैं। इंद्र या विष्णु या ब्रह्म, मैं उनके दैवी कृपा की कामना नहीं करता, मैं आपके संतों के प्रेम की कामना करता हूँ। चाहे मेरा घर इससे नष्ट हो जाए, मैं निकटतम नरक में चला जाऊँगा, किंतु आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि कैसे मेरा हृदय आपके अतिरिक्त किसी अन्य देवता के बारे में सोच सकता है। मुझे जन्मों का भय नहीं है, किंतु मैं इस विचार से कांप जाता हूँ कि मुझे मरना होगा। मेरे लिए स्वर्ग भी निरर्थक है, क्योंकि मेरे पास पृथ्वी का पूरा साम्राज्य है, मैं क्यों फिक्र करूं? मधुर पुष्पों के हार वाले शिव, कब प्रातः काल होगा? आप कब मुझे अपनी कृपा प्रदान करेंगे? मैं दुख से रो रहा हूँ, मैं खुद को नहीं समझ पाता और न दिन और रात को समझ पाता हूँ। वह जो शब्दातीत और भावातीत है, उसने मेरी इंद्रियों को शांत कर दिया है। जो बैल के लिए विष्णु है और पेरुंदुराई में वास करता है, हे परम प्रकाश, उसने ब्राह्मण के वेश में मुझे विचित्र रूप से सम्मोहित कर दिया है। मुझमें कोई गुण, साधना, ज्ञान, आत्मनियंत्रण नहीं था। मैं एक कठपुतली के समान दूसरों की इच्छा पर नृत्य करता था, सीटी बजाता था, गिरता था, किंतु उसने मेरे अंग में प्रेम की कामना भर दी थी कि जिससे मैं वहां चढ़ सकूं, जहां मैं जहां से कोई लौटता नहीं। उसने अपने सौंदर्य का दर्शन करा दिया है, मुझे अपना बना लिया है। ओह, मैं उसके निकट कब जाऊंगा? अन्य शैव संतों में तिरुमुलर, नजीरर, नंबियारदार, नंबी सेकिरार के संबंध में अधिक कुछ लिखने को नहीं है। वे उसी विचारधारा पर चलते रहे और उन्होंने अपने पूर्वगामियों के द्वारा निर्मित भावनाओं के भंडार में योगदान दिया है।